रुचि जी, हमने आपसे पिछले अंक में बात की थी पॉजिटिव पेरेंटिंग के बारे में, नेचर नर्चर, ईस्ट वेस्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स हमने इस्तेमाल किए, पर हमने अंत में चलते चलते अपने सुनने वालों को बताया था कि हम बात करेंगे आज टेंट्रम्स, रेबेलियन, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को किस तरीके से बॉन्डिंग या पॉजिटिव पेरेंटिंग की लैंग्वेज में सुधारा जाए।
जी,
तो आपको कितना लगता है कि टेंट्रम्स, रेबेलियन या डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर ये पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है? ये हमने भी किया अपने पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चे भी करेंगे, उनके बच्चे भी करेंगे, एक तरीके से कहा जाए तो ये ह्यूमन नेचर है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप बात कर रहे थे, मुझे अपना बचपन याद आ गया।
जी
बिल्कुल, ये इट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन इसको आप एज अ पेरेंट किस तरह हैंडल करते हैं, उसी में सारा जो सार है उस चीज का, वो उसी में है कि एज अ पेरेंट हम इसको किस तरह हैंडल करते हैं।
जी,
क्योंकि अगर हम सोचें कि बच्चा अभी छोटा है, इसको अभी समझ नहीं है, तो ये गलत है।
जी,
बच्चे को हमेशा समझ होती है। जो बच्चे का दिमाग है, आजकल तो काफी आपको साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि बच्चे का दिमाग प्योर होता है, इसलिए उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके जो फिल्टर्स हैं अभी सेट इन नहीं हुए हैं, उनके जो बाहर से हम बिलीव्स ले आते हैं अपने अंदर, वो अभी उनके अंदर आए नहीं है, तो प्योर माइंड है। तो इसका मतलब ये नहीं है उसको समझ नहीं है, तो बच्चे को बिल्कुल समझ है। और क्वाइट ऑफन एज अ पेरेंट हमें देखना है कि वो टैंट्रम कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, क्या रूट कॉज है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर कोई चीज गड़बड़ हो रही है, आप उसके सिम्टम को नहीं फिक्स करते हैं, आप रूट कॉज ढूंढते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम है। यू नो, अगर कोई मशीन का पार्ट खराब हो जाता है, आप ढूंढते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर जाके प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। उसी तरह टैंट्रम्स, डिसिप्लिनिंग वगैरह, एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखें बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। टैंट्रम का काफी रीजन हो सकते हैं, द मोस्ट कॉमन रीजन है अटेंशन सीकिंग।
जी,
तो आपको देखना है कि कहाँ पे क्या चूक हो रही है, और फिर टैंट्रम को किस तरह से आप डील करें, इसका भी एक तरीका है। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलेगी, ये हार्ड वर्क है। पेरेंटिंग इज अ हार्ड वर्क, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है एज अ पेरेंट। हमें देखना है, हमें अपने बच्चे को समझना है, और फिर देयर आर टेक्निक्स जिसकी हम पॉजिटिव पेरेंटिंग में बात करते हैं, कि किस तरह से आप एम्पावरिंग लैंग्वेज यूज करें, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव लैंग्वेज। एम्पावरिंग लैंग्वेज कैसे यूज कर सकते हैं, और फिर टोनैलिटी एक होती है, उससे आप बच्चे को, अगर बच्चा टैंट्रम कर रहा है तो उस टाइम तो कोई लॉजिक नहीं चलेगा, तो क्या आपको स्टेप्स लेने हैं। आप अपनी टोनालिटी मैनेज करते हैं, आप अपना सिचुएशन मैनेज करते हैं, उससे थ्रू दो स्टेप्स आप टैंट्रम पहले मैनेज करते हैं, उसके बाद यू विल डू अ, जिसे हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में कहते हैं, रूट कॉज एनालिसिस, कि क्या प्रॉब्लम थी जिससे वो ट्रिगर हुआ बिहेवियर। और ये टैंट्रम की ही बात नहीं है, एनी बैड बिहेवियर, यही हम टेम्पलेट यूज करते हैं कि पहले आप सिचुएशन को काम करें, जब वो सिचुएशन काम हो जाती है फिर आप बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करिए, लेकिन ये डिस्कशन ऑनेस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। और काफी लोग मुझे पूछते हैं कि यू नो, अभी तो बच्चे छोटे हैं। मेरे हिसाब में जिस दिन से बच्चा आपके साथ बात करने लगता है, उस दिन से उसमें वो कैपेबिलिटी है टू होल्ड अ कॉन्वर्सेशन।
जी,
क्या था दैट कॉज दैट प्रॉब्लम, क्यों आपने इस तरह से बिहेव किया, और एज अ पेरेंट एंड एज अ चाइल्ड हम दोनों मिलके किस तरह से उसको यू नो फिक्स कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन ना अराइज हो। और बाय चांस अगर नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन फिर से अराइज होती है और आपका बिहेवियर फिर से इस तरह होता है, तो हम क्या करें टू मैनेज दैट। सो एक यू नो वो हो जाता है, कॉन्वर्सेशन इज अबाउट द कॉज, रिजल्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस। तो ये फॉर्मेट है जिसको टीच द पेरेंट्स, इसके थ्रू हम सिचुएशंस मैनेज करना सीखते हैं। जैसे मैंने कहा, इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत है।
एक दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब बच्चे, कई बार बच्चे वहीं पैदा होते हैं, 6-7 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो उनमें कहीं पर एक कम्युनिकेशन गैप या मोटिवेशन डीमोटिवेशन शुरू हो जाता है जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो उसमें पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे हेल्प कर सकता है, कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को हेल्प करें उसमें।
ये आपने बहुत अच्छी बात रेज करी है, बिकॉज कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा है हमारे, जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हम रह रहे हैं। हमारे वहाँ काफी बदलाव आया है, लेकिन आज भी जब आप स्कूल में जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती है खड़े होकर टीचर को बोले कि तुमने ये गलत कहा है।
जी।
ویرے جو آسٹریلین سوسائٹی ہے وہ بہت ایگالیٹیرین سوسائٹی ہے, تو یہاں کوئی وہ نہیں ہے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے, جس کو جو بولنا ہے وہ بول دیتا ہے. تو اسکولوں میں بھی یہ آتا ہے, اور ساتھ میں پھر ہمارے بچوں کو تھوڑا یہ بھی لگتا ہے کہ وہ الگ ہیں, دوسروں سے فرق ہیں, تو وہاں سے بھی ان کو تھوڑا ڈیمیوٹیشن ٹائپ سیٹنگ ہو جاتا ہے. سو ان سچویشن میں پیرنٹس بہت بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں, اینڈ ان کو پہلے تو اسکول میں تھوڑا انوالو ہونا پڑے گا. بچوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے ایک کمیونیکیشن چینل اوپن رکھیے, پتا کریے آپ کے بچے کا اسکول کیسا تھا, اس کا دن میں اس نے کیا کیا, کون اس کے دوست ہیں, کس طرح سے, اینڈ پھر آپ اپنے ایکسپیرئنس سے ان کو تھوڑا وہاں پہ مینیج کریے اگر بچے کو کوئی پرابلم آ رہی ہے. دا ادر تھنگ آئی فائنڈ اسپیشلی اس ایج گروپ میں, اگر آپ 6-7 ایئرز اولڈ کے بچوں کا ایج گروپ بات کر رہے ہیں, پلے ڈیٹس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. سو بچوں کو آپ گھر میں انوائٹ کریے, بچوں کے فرینڈس کو, اس سے کافی چیزوں کی تو بچوں کا فرینڈشپ سرکل بڑھتا ہے, پر دوسرا آپ کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے اسیس کرنے کے لیے کہ وہ دوسرے بچے کس طرح سے بہیو کرتے ہیں, پھر آپ اپنے بچوں کو بھی گائڈ کر سکتے ہیں, یو نو, ٹو کاؤنٹر دیٹ کائنڈ آف بہیویئر یا ڈیل ود دیٹ کائنڈ آف بہیویئر, یا اگر اچھا بہیویئر ہے دین ماڈل دیٹ کائنڈ آف بہیویئر. تو اگین پیرنٹس کا جو رول ہے وی کانٹ انڈر ایسٹیمیٹ, بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے ہمارا, ہمارے بچوں کی لائف.
روچی جی آپ نے بات کی پیرنٹس کے رول کی, میں اگلے انک میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ پیرنٹنگ اگر ایک جاب ہے تو ایز اے جاب پیرنٹ ایک لیڈر ہے گھر پہ.
بالکل جی,
تو ہم اس پہ بات چرچا جاری رکھیں گے ہمارے اگلے انک میں.